दीवा जेल में अपने पापा से मिलकर फ्री हुई थी कि उसके पास सिस्टर लीजा का कॉल आया। लीजा ने उसे एक होटल में आने को कहा, जहां हॉस्पिटल के डीन एक डिनर गैदरिंग रख रहे थे। ये डिनर गैदरिंग किसी मीटिंग के चलते रखी गई थी। दीवा वहां पहुंची तो उसे पता चला कि ये मीटिंग उनके डीन के बजाय किसी और शख्स ने रखी है। वे सब इस शख्स के आने का इंतजार कर रहे थे। इन सब के बीच वहां आर्यांश कपूर की एंट्री हुई। उसे देखते ही दीवा को समझ आ गया था कि जरूर ये मीटिंग आर्यांश ने रखवाई है। आर्यांश को देखते ही दीवा ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। आर्यांश के सम्मान में वे सब लोग खड़े हुए तो मजबूरन दीवा को भी खड़ा होना पड़ा। उनकी डॉक्टर आलोक रंधावा आगे गए और आर्यांश की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, वेलकम मिस्टर कपूर, हम बस आप ही के आने का इंतजार कर रहे थे। आर्यांश ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। हैंडशेक करने के बाद वो उनके साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। वहां आते ही उसकी नज़र सबसे पहले दीवा की तरफ गई। दीवा को देखते ही आर्यांश ने अपनी दिलकश आवाज में कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस डॉक्टर गोयंका। आर्यांश के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दीवा झेंप गई। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आर्यांश को थैंक्स कहा। उसकी तारीफ के बाद दीवा थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगी, क्योंकि सब उसी की तरफ देखने लगे। उन सबके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये सब चीज दीवा की शर्म और असहजता को बढ़ा रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या फर्क पड़ता है मैं कैसी लग रही हूँ या कैसी नहीं, इसे क्यों मेरी मुसीबतें बढ़ानी होती हैं। अगर मीटिंग करने के लिए आया है तो मेरी तारीफ करने की क्या जरूरत है। दीवा मन ही मन आर्यांश को कोस रही थी। तभी डॉक्टर आलोक ने कहा, चलिए मैं आपको इस डिनर गैदरिंग का कारण बता देता हूँ। मिस्टर कपूर हमारे हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी के साथ वे हमारे शेयर होल्डर भी बन जाते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हम सबके लिए एक शानदार डिनर देने की बात रखी, तो मैं मना नहीं कर पाया। आप सब इसके हकदार हैं, आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा। हर कोई गुड बुक्स में आने के लिए कुछ न कुछ बोल रहा था। उनसे अलग दीवा इस वक्त काफी इरिटेट हो रही थी। आर्यांश भी कुछ नहीं बोल रही थी, उसकी नजरें बस दीवा पर ही टिकी हुई थी। आलोक रंधावा का ध्यान जब इस तरफ गया कि आर्यांश दीवा की तरफ देख रहा है, तो उसने दीवा का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, ये हमारे हॉस्पिटल की सबसे कम उम्र की सर्जन है। मिस दीवा गोयंका ने थोड़े टाइम पहले ही ज्वाइन किया है, पर सच में इनकी काबिलियत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हाँ, मानना पड़ेगा मिस गोयंका में कुछ तो बात है, तभी तो मेरे मामा की सर्जरी इन्होंने सक्सेसफुली हैंडल कर ली। मिस गोयंका को देखने के बाद लग रहा है कि मैंने अपने पैसे गलत जगह इन्वेस्ट नहीं किए हैं, आर्यांश ने दीवा को घूरते हुए कहा। उसकी बातों का मतलब दीवा बखूबी समझ रही थी। थैंक यू सो मच मिस्टर कपूर, दीवा ने मजबूरी में कहा। सब दीवा को कंग्रेचुलेट करने लगे, लेकिन इन सबके बीच डॉक्टर यथार्थ मल्होत्रा का मुंह बना हुआ था। उन्हें दीवा बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऊपर से यहाँ पर तो उसकी इतनी तारीफ हो रही थी। वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनका बस चलता तो वो दीवा को कब का निकाल देते। डिनर के बाद आर्यांश ने उनके लिए महंगी शैंपेन की बोतल मंगवाई। दीवा ड्रिंक नहीं करना चाहती थी, लेकिन सबके फोर्स करने पर वो मना भी नहीं पाई। खाना पीना हो जाने के बाद सब वहां से जाने लगे। वहीं दीवा के इस जगह से यादें जुड़ी हुई थीं, तो वो उनके साथ जाने के बजाय रेलिंग के पास आकर बाहर शहर की तरफ देखने लगी। दुनिया उसी तरह आराम से चल रही थी। ठंडी हवा के थपेड़े दीवा के चेहरे को छू रहे थे, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। ठंड से बचने के लिए दीवा खुद की बाजू को सहला रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार अपने डैड का चेहरा आ रहा था। पिछले तीन दिनों से वो ठीक से सोई तक नहीं थी। दीवा को लगा सब यहां से जा चुके हैं, तो वो भी अपने कदम बढ़ाने ही वाली थी। तभी पीछे से एक सर्द आवाज आई। वो आर्यांश था। उसने पूछा, अकेली खड़ी होकर क्या सोच रही हो। मैं बस यहां से जा ही रही थी, थोड़ा सफोकेशन फील हो रहा था, तो सोचा खुली हवा में सांस ले लेती हूँ, दीवा ने बहाना बनाया। वो उसके पीछे यहां तक चला आया था। दीवा आर्यांश से बात करने के मूड में नहीं थी, इस वजह से वो उसे इग्नोर करने लगी। आर्यांश उसके पास आया और बोला, तुम तो बहुत अच्छे बहाने बना लेती हो। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। खैर, मैं यहां से जा रही हूँ, फिर कभी मिलते हैं मिस्टर कपूर, दीवा ने जवाब दिया। इतना कहकर दीवा ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि आर्यांश ने अचानक उसकी कलाई को पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। आर्यांश का एक हाथ दीवा की कमर पर था। वे दोनों एक दूसरे के चेहरे के इतने करीब थे कि दीवा आर्यांश की गर्म सांसों को खुद के चेहरे पर महसूस कर रही थी। तो तुम जाना चाहती हो, आर्यांश ने गहरी आवाज में पूछा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, दीवा ने घबराहट के साथ पूछा। उस रात से पहले दीवा आर्यांश से कभी नहीं मिली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे क्यों टारगेट कर रहा है। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम बस एक बार कहकर तो देखो, आर्यांश ने जवाब दिया और उसने झटके से दीवा को खुद के और करीब कर लिया था। आर्यांश की हरकतें दीवा की दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। वो सब समझ रही थी। आर्यांश उसकी फैमिली की कंडीशन का फायदा उठाकर उससे शादी करना चाहता था। दीवा ने खुद को मजबूत किया और कहा, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर कपूर, मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, दीवा ने साफ मना कर दिया। इतनी परेशानी में भी दीवा के मना करने पर आर्यांश ने भौहें उठाकर कहा, दीवा गोयंका, क्या कभी तुमने अपनी जिंदगी में उस लम्हे को महसूस किया है जब सब खत्म होने वाला हो और आपका कोई बस ना चले? दीवा कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देख रही थी। तभी अचानक से आर्यांश ने उसका हाथ छोड़ा और वो रेलिंग से आधा नीचे की तरफ झूल गई थी। वो बिल्डिंग बहुत ऊंची थी, अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो दीवा नीचे आ जाती। दीवा ने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया मौत के इतने करीब आने के बाद भी न जाने क्यों उसे मौत से डर नहीं लग रहा था और दिल ही दिल में एक सुकून मिल रहा था। क्या मरने से उसकी मुसीबतें खत्म होने वाली थी? उसे उसके दिल में जवाब मिल गया था। दीवा थक चुकी थी, शायद उसकी सहन शक्ति इतनी ही थी। जब वो दुनिया को अलविदा कहने को हुई तभी आर्यांश के उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा और दीवा की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, हाँ मर जाओगी तो शायद तुम अपनी तकलीफों से आजाद हो सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें जीना होगा, अभी तो तुम्हारी तकलीफों की शुरुआत हुई है। तभी दीवा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो इतनी आसानी से मर नहीं सकती थी, उसके माँ डैड के अलावा और कोई नहीं था, वे दोनों मुसीबत में थे। ऐसी सिचुएशन में दीवा मरने का सोच भी कैसे सकती थी? दीवा ने गहरी सांस ली और फिर आर्यांश के चेहरे की तरफ देखा जिस पर एक छोटी सी स्माइल थी। ऐसे लग रहा था कि वो उसे तकलीफ देकर खुशी महसूस कर रहा था। शायद ही अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों को दर्द देकर इन्हें खुशी मिलती है। दीवा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, क्योंकि आर्यांश भी उसके साथ यही कर रहा था। उसे तकलीफ देकर न जाने क्यों आर्यांश के चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते थे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले चैप्टर पर मिलते हैं। प्लीज पढ़कर लाइक और कमेंट किया करो आप लोग।